आचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार की गाथा 47-48 दोनों एक साथ हम देखने जा रहे हैं। और ये जो गुरुदेव के प्रवचनों की जो सीरीज है उसमें प्रवचन रत्नाकर भाग 3 उसके पृष्ठ क्रमांक 54 पर हम आए हुए हैं। देखो यहां लिखते हैं अथ केन दृष्टांतेन प्रवृत्तो व्यवहार इति चेत, यानी क्या बताते हैं कि अभी शिष्य उनसे पूछ रहा है कि ये व्यवहार ने कया दृष्टांत थी प्रवृत्तियों छे, यानी ये व्यवहार ने कैसा होता है, वो उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, वो दृष्टांत के माध्यम से हमें समझाइए, तेनो उत्तर कहे छे। अब हम गाथा 47-48 दोनों साथ में पढ़ेंगे।
राया हुणि गदोत्तिय एसो बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण दुच्छदि तत्थे को निगदो राया एमे वय व्यवहारो अज्जवसाणादि अन्न भावाणम् जीवोत्ति कदो सुते सत्थे को निश्चिदो जीवो राजा खलु निर्गत इति एष बल समुदयस्य आदेश व्यवहारेण तु उच्यते तत्रैको निर्गतो राजा एवमेव च व्यवहारो अद्यवसानाद्यनन्यभावानां जीव इति कृतः सूत्रे तत्रैको निश्चितो जीव निर्गमन अनुपनुतयो निर्देशसैन्यसमूहने व्यवहारथी कहवाय पण भूपएम एक छे एम सर्व अद्यवसान आदि अन्य भावो जीव छे सूत्रे कयो व्यवहार पण त्या जीव निश्चय एक छे निर्गमन अनुपनु थयो निर्देश सैन्य समूहने व्यवहार थी
कवाय पण भूप ए माए
एक छे एम सर्वयद्यवसान आदि अन्य भावो जीव छे सूत्रे कर्यो व्यवहार पण त्या जीव निश्चय एक छे।
देखो यहाँ व्यवहार नय कैसा होता है, इसके दृष्टांत के द्वारा व्यवहार नय का कथन कैसा होता है, ये दृष्टांत के द्वारा हमें समझा रहे हैं। अभी वो क्या बता रहे हैं, जब देखो राजा निकलता है तब राजा तो अकेला कभी निकलता ही नहीं है, तो उसका जो सैन्य होता है, मान लीजिए कि भाई ऐसा 12 योजन सैन्य चला होगा, अभी हम समझने के लिए, तो यहाँ क्या कहेंगे कि ये इतने पूरा सैन्य समूह को देखते हुए ये राजा का गमन हो रहा है। वास्तविक राजा तो इतने बड़े फैलाव में तो फैला हुआ नहीं है, फिर भी व्यवहार से कहेंगे कि राजा जा रहा है, उसका निर्गमन हो रहा है। वैसे अध्यवसान आदि जो भाव है वो अनेक होते हुए भी वो करने वाला तो एक जीव द्रव्य ही है, फिर भी इन सारे अध्यवसान आदि भावों में यह जीव व्याप्त है ऐसा कहना यह व्यवहार है। बस इतनी ही सी बात है। अभी हम जब टीका आदि पढ़ेंगे तो अपने को बहुत आसानी से समझेगा। देखो हाँ बोलो। एम सर्व अध्यवसान आदि अन्य भावो जीव छे ऐसा कहना यह व्यवहार नहीं है, ऐसा बता दे। सूत्रे करियो व्यवहार, यानी सूत्र में वो व्यवहार का कथन किया है, फिर भी पण क्या जीव निश्चय एक छे, वहां जीव तो एक ही है ऐसा समझा रहे। देखो जेम कोई राजा सेना सहित निकलियो त्या राजा खलु निर्गत आ राजा निकलियो इति एषा एम आजे बल समुदायस्य सेनाना समुदाय ने आदेशा केवामा आवे छे ते व्यवहारेन तु उच्यते व्यवहार थी केवामा आवे छे। तत्र ते सेनामा वास्तविकपणे एकः निर्गतः राजा राजा तो एक ज निकड़ियो छे एवं एवं एवच एथीज तेवीज रीते अध्यवसान आदि अन्य भावानां अध्यवसान आदि जे अन्य भावों ने जीवः इति याने आ जीव छे एम सूत्र एटले परमागम मा कयूं छे ते व्यवहार कृता ते व्यवहार करियो छे। तत्र निश्चित याने निश्चय थी विचारवामा आवे तो तेमना मा जीवः एकः जीव तो एकज छे। अब बात आसान हो गई ना समझने के लिए। जेम आ राजा 5 योजना फैलाव थी निकली रहो छे एम केमू ते एक राजा नू 5 योजना फैलावू अशक्य होवा थी व्यवहारी लोकोनो सेना समुदाय मा राजा केवारू व्यवहार छे। परमार्थ थी तो राजा एक ज छे, सेना राजा नथी, तेवी रीते आ जीव समग्र राग ग्राम मा। देखो ये राग को ग्राम यानी गांव बताया, ये पूरे उसमें फैला हुआ नहीं है, यानी अनेक प्रकार के राग पर नाम है। एम रागना स्थानों मा व्यापी ने प्रवृत्ति रहो छे एम केमू ते एक जीवनु समग्र राग ग्राम मा व्यापू अशक्य हुआ थी व्यवहारी लोकोनो अध्यवसान आदि अन्य भावों मा जीव केवा रूप व्यवहार छे, यानी अन्य अध्यवसान आदि जे अन्य भाव है उसको जीव कहना यह व्यवहार है। परमार्थ थी तो जीव एकज छे, अध्यवसान आदि भावो जीव नथी। हवे शिष्य पूछे छे क्या व्यवहार ने कया दृष्टांत थी प्रवर्त्यो छे, तेनो उत्तर कहे छे 5 योजना फैलावती लश्कर निकली रही होय क्या राजा 5 योजना फैलावती निकली रहो छे एम व्यवहार थी उपचार थी कहेवाय छे। खरेखर राजा नु 5 योजना फैलावू अशक्य छे, છતાં વ્યવહારી લોકોનો સેના સમુદાયમાં રાજા કહેવારૂપ વ્યવહાર છે, પરમાર્થથી તો રાજા એક જ છે, સેના રાજા નથી, છતાં સેનાને રાજા કહેવાનો લોક વ્યવહાર છે। તેવી રીતે આ જીવ સમગ્ર રાગગ્રામમાં વ્યાપીને પ્રવર્તી રહ્યો છે એમ કહેવું તે એક જીવનું સમગ્ર રાગગ્રામમાં વ્યાપવું અશક્ય હોવાથી વ્યવહારી લોકોનો અધ્યવસાનાદિક અન્ય ભાવોમાં જીવ કહેવારૂપ વ્યવહાર છે, પરમાર્થથી તો જીવ એક જ છે। ખરેખર સેનામાં રાજા વ્યાપ્યો નથી, ક્યા કહેતે હૈ, પણ સેનામાં રાજા નિમિત્ત છે, તેથી રાજા પાંચ યોજનમાં વ્યાપીને રહ્યો છે એમ કહેવામાં આવે છે। તેવી રીતે શુદ્ધ આત્મવસ્તુ છે તે વિકારના અનેક પ્રકારમાં કંઈ વ્યાપી નથી, પણ વિકારના અનેક પ્રકાર જે અશુદ્ધ ઉપાદાનભૂત છે તેમાં આત્મા નિમિત્ત છે। અશુદ્ધ ઉપાદાન પર્યાયનું પોતાનું સ્વતંત્ર છે, પણ દ્રવ્ય તેમાં નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે। દેખો યહાં પર્યાય કો દ્રવ્ય કો નિમિત્ત કહા, પર્યાય કા નિમિત્ત કોને, તો સ્વયં દ્રવ્ય, ક્યુંકિ યહાં દ્રવ્ય પર્યાય સ્વતંત્ર હૈ, અપને અપને ઉપાદાન યોગ્યતા સે પર્યાય પલટતી હૈ, તો ઉસમે નિમિત્ત દ્રવ્ય સ્વયં કે હી દ્રવ્ય કો લિયા હૈ। ક્યા કહેતે હૈ ये नीचे से चौथी पांचवी लाइन है। अशुद्ध उपादान पर्याय नु पोतानु स्वतंत्र छे, मिला, पन द्रव्य ने तेमा निमित्त केवामा आवे छे, ए भी उपचार से। श्री योग सार मा आ वात लीधी छे, विकार नु मूल उपादान आत्मा नथी, विकार नु मूल उपादान आत्मा नथी, अशुद्ध उपादान व्यवहार સ્વતંત્ર છે, આત્મવસ્તુ તે વિકારમાં ઉપાદાન નથી, નિમિત્ત છે, તેથી વ્યવહારથી આત્મા રાગમાં વ્યાપ્યો છે એમ કહેવામાં આવે છે। ભાઈ આવું વિતરાગનું તત્વ સમજવું ઝીણું છે। હા દેખો ક્યાં કહેતે, યોગસારમાં આ વાત લીધી છે, વિકારનું મૂળ ઉપાદાન યાને વિકાર જો હો રહા હૈ પર્યાય મેં, વહ પર્યાય કી સ્વયં કી ઉપાદાન યોગ્યતા હૈ, દ્રવ્ય કી નહીં। તો ક્યાં સમજા રહે હૈ કે વિકારનું મૂળ ઉપાદાન આત્મા નથી, વો જો અશુદ્ધ ઉપાદાન હૈ કોણ સા વિકાર રૂપ પરિણામ ને કા, તો વહ પર્યાય કા હૈ, ઓર વો ઇસલે ઉસકો વ્યવહાર સ્વતંત્ર છે, યાની વહ જો પર્યાય હો રહી હૈ તો વહાં વ્યવહાર હો ગયા ના, દ્રવ્ય જુદા ઓર પર્યાય જુદી, તો વો જો વ્યવહાર હૈ યાની પર્યાય કા જો પરિણમન હૈ વહ સ્વતંત્ર હૈ। અભી ક્યા કહેતે, આત્મવસ્તુ છે તે વિકારમાં ઉપાદાન નથી, વહી પહેલે વાલી વાત ફિર સે દોહરાઈ, નિમિત્ત છે, તેથી વ્યવહારથી આત્મા રાગમાં વ્યાપ્યો છે એમ કહેવામાં આવે છે। લેકિન અસલ મેં ક્યા હૈ, આત્મા સ્વયં જુદા હૈ ઓર વો વિકાર જુદા હૈ। અભી દેખો કંઈ કંઈ તો આગે આતે વાત આયેગી કે વો જો વિકાર રૂપ પર્યાય હો રહી ના, ઉસકે પ્રદેશ જુદે હૈ, એસા કહા હૈ, ખ્યાલ મેં આયે। અભી હમને તો પુદગલ કે ઇધર તક પ્રદેશોં કો ભી હટા દિયા, વિકાર પર્યાય કે વો કોણ સી વિકારી પર્યાય કે, જહાં જૈસા કથન હૈ વૈસા સમજો, કિસમે હમ परद्रव्य ऐसा नहीं, निमित्त निमित्त होता है बस, परद्रव्य होता है ऐसा नहीं लगाएंगे। हाँ जी, हाँ वहां देखो स्वभाव एक है, अभी स्वभाव तो यहाँ पर्याय स्वभाव लेना कि जो विभाव रूप परिणमने वाला भी उसका स्वभाव हो सकता है, फिर वहाँ काल लब्धि भवितव्यता और क्या है होनहारी वही भवितव्यता हुई, निमित्त और पुरुषार्थ, ये सब उसी इसमें लगेंगे। अभी इसीलिए तो ये निमित्त को पर पदार्थ जो कहा था वो इसलिए कि वहाँ वह बाह्य में होता है, निमित्त में अपना स्वयं का कुछ भी कार्य नहीं, अधिकार नहीं है, इसलिए उसको पर में डाला। तो यहाँ तो भेद ही कर दिया ना, पर्याय और आत्मा दोनों जुदे जुदे बताए, तो उसके लिए वो पर ही हो गया। चलो परमार्थी थी तो राजा एक छे, सेना राजा नथी, केम के सेना मा राजा नु व्यापु अशक्य छे, तेम निश्चय थी आत्मा। अतीन्द्रिय ज्ञान ने आनंद नु पिंड प्रभु, शुद्ध चैतन्य घन वस्तु एक ज छे। ये निश्चय की बात ली है और पर्याय में वहां विकार होता है, वह जुदा है ऐसा बताया। आ मिथ्यात्मना असंख्य प्रकार, शुभ भावना असंख्य प्रकार तथा अशुभ भावना असंख्य प्रकार, एम जे समग्र राग ग्राम छे ते आत्मा नथी। ये आपको असंख्य प्रकार यानी कितने हैं मालूम है? हाँ हाँ, क्या कहा उन्होंने? असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक प्रमाण जो है वो असंख्य है ही है, ऐसे असंख्य लोक प्रमाण बार गिनो। तो असंख्यात लोक प्रमाण बार जितने भेद होंगे, मतलब जितने प्रकार क्वांटिटी होगी, उतने शुभ भाव है, उतने मिथ्यात्व के भाव है, उतने अशुभ भाव है, इन सब में आत्मा फैला हुआ है, तो अभी जरा अच्छा लगता है। परंतु ते राग ग्राम छे ते आत्मा नथी, ये निश्चय की बात ले रहे हैं भाई। केम के ते राग ग्राम मा आत्मानु व्यापू अशक्य छे, आनंदनो नाथ त्रिकाली शुद्ध भगवान नित्य ध्रुव प्रभु असंख्य प्रकारनी अशुद्धता मा विकार मा केम आवे। ये कितनी अशुद्धता, असंख्य प्रकारनी अशुद्धता, उसमें जो शुद्ध भगवान आत्मा है, जो नित्य कायम टिकने वाला है, वो एक एक समय की पर्याय में कहाँ से आएगा, अशुद्धता में कहाँ से आएगा, उसकी शुद्धता तो कायम है। अशुद्धता ने करे विकार ने करे एवो कोई आत्मा में गुण के स्वभाव के शक्ति नथी। पर्याय में जो अशुद्धता थाई छे ते स्वतंत्र अशुद्ध उपादानती थाई छे, यानी पर्याय की ही अशुद्ध उपादान है, अपनी योग्यता है उसके, उपादान कहो के व्यवहार कहो, शुद्ध उपादान भूत वस्तु काई अशुद्ध उपादान नु कारण नथी, पर निमित्त छे, तेथी जेम सेना मा राजा रह्यो छे एम केवानो व्यवहारी लोकोनो व्यवहार छे, तेम विकार मा जीव रह्यो छे एम केवानो व्यवहारीजनो व्यवहार छे, वस्तु खरेखर राग मा आवीज नथी, पर्याय मा गई नथी एम के छे। अज्ञानियों ने समझावा व्यवहार थी उपदेश करवामा आवे छे, पण व्यवहार ने ज चोटी पड़े एटले वळगी पड़े ए उपदेश ने पात्र नथी। ये मेरे हिसाब से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है तस्य देशना नास्ति, यानी उसको देशना भी देनी नहीं चाहिए। क्या कहते, देखो व्यवहार से उपदेश किया और वो व्यवहार ही साचा है ऐसा मान के बैठेगा, और व्यवहार करने से ही हमारे धर्म होगा ऐसा मानेगा, वड़गी पड़े यानी उसको ही चोटी पड़े। क्या लिखा है, यानी बस वही सच है ऐसा मान लेवे तो कहते हैं कि ऐसे जीव को उपदेश देना भी योग्य नहीं है, ते उपदेश ने पात्र नहीं, ऐसा समझाते। अरे भाई, आत्मा कोई अलौकिक वस्तु छे, ये तो भगवत स्वरूप परमात्मा रूप समयसार छे, त्रिकाल ध्रुव परमानंद स्वरूप चित चित घन वस्तु छे, ये भूतार्थ छे, यानी भूतार्थ छे ने है सत सत्ता स्वरूप छे, सत्य छे, तेनेज आत्मा अने समयसार छे, अने तेज आत्मा अने समयसार छे। श्री समयसार गाथा 11 मां आवे छे कि त्रिकाळी शुद्ध वस्तु छे ते भूतार्थ छे, अने असंख्य प्रकारना विकारो पर्याय भेदो छे, ते त्रिकाळीनी अपेक्षा ए असत्यार्थ छे। देखो, यहाँ पर्याय भेदों को विकार, असंख्य प्रकार के विकार भी कहा, विकार जो होते हैं वो पर्याय में होते हैं ना, इसलिए उसे व्यवहार का पर्याय नहीं अपेक्षा है, पर्याय छे, पर द्रव्य नहीं अपेक्षा है, असत्यार्थ छे। रागादीना असंख्य प्रकार मा आत्मा उपादान भूत नथी, निमित्त तरीके छे, नित्य एक रूप सत्यार्थ प्रभु आत्मा चिन्मात्र मूर्ति पवित्रता नो पिंड छे, तेने असंख्य प्रकारना राग मा व्यापेलो केवो ते व्यवहार नहीं छे। वस्तु तो शुद्ध उपादान स्वरूप छे, तेमा अशुद्धता नी गंध नथी, यानी स्वभाव जो है, वस्तु जो है वो तो शुद्ध ही हो, माटे अशुद्धता नी दशा मा फैलाई नी रहे ते अशक्य छे। छता पर्यायमां जे रागादी असंख्य प्रकारे अशुद्धता छे, तेमा अशुद्ध उपादान कारण छे, अशुद्ध उपादान कारण छे, ते स्वतंत्र छे, द्रव्यनुं तो मात्र तेमा निमित्तपणुं छे, एटले मात्र हाजरी एटले उपस्थिति छे, तेथी व्यवहारथी एटले अभूतार्थ नहींती एम कहेवामां आवे छे के रागादीना असंख्य प्रकारोमां आत्मा व्याप्यो छे। ये जैसा हमने राजा का उदाहरण देखा ना, उसी तरह यहाँ राग रूपी पर्याय के जो कोई राग ग्राम उसमें आत्मा व्यापा है ऐसा कहना व्यवहार है, वास्तव में तो उससे तद्दन जुदाई है। भाई आवाज झीणी छे पण प्रयत्न करे तो समझाय देवी छे। त्रण लोकना नाथ परमे सर्वज्ञ परमेश्वरना आ वचनो छे ते संतोए प्रसिद्ध कर्या छे, तेनू वाच बहु ऊंडू अने रहस्यमय छे, यानी जिसके बारे में वह कहने में आ रहा है कौन आत्मा, वो कैसा है, बहु ऊंडू अने रहस्यमय छे, गंभीर कथन छे। शू कहे छे के पूर्णानंद नो नाथ नित्यानंद ध्रुव प्रभु विकारना रागना विस्तार मा व्यापे ए अशक्य छे। आ दयादान व्रत भक्ति पूजा इत्यादि शुभ भाव, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह काम क्रोधादि अशुभ भाव तथा असंख्यात मिथ्यात्वना भावो एम असंख्य प्रकारना जे विकारी भावो तेमा सत्यार्थ शुद्ध जीव वस्तु व्याप्ति नथी, केम के ते अनादि अनंत ध्रुव एक स्वरूप छे, ते एटले आत्मा आत्मा सर्वज्ञ सिवाय आ वात बीजे क्यांक मळे एम नथी। अहो द्रव्य स्वभाव शू अद्भुत पारलौकिक चीज छे, पारलौकिक यानि जो लौकिक से पार यानि अलौकिक छे, परमार्थे जीव एक ज छे, अध्यवसान आदि भावो जीव नथी, अशुद्धता ने करे एवी जीव में कोई शक्ति के गुण नथी, पर्याय में जे अशुद्धता ना विकारी भाव थाय छे ते जीव में छे एम व्यवहार थी कहवाय छे, खरेखर ए मूल वस्तु में नथी। व्यवहार रत्नत्रयनो राग देवगुरु शास्त्रनी मान्यतानो विकल्प, नवतत्वना भेदरूप श्रद्धानो राग, शास्त्र भणवानी रुचिना विकल्प, पांच महाव्रत पाळवानो विकल्प, છ કાયના જીવોની રક્ષાનો વિકલ્પ એ બધામાં આત્મા વ્યાપતો નથી, છતાં એ બધામાં આત્મા છે એમ કહેવું તે વ્યવહાર નહીં છે. સમજવાય ભાઈ? અભી તો ક્લિયર હો ગયા બધું? હા પિનાક ભાઈ, બાત ખ્યાલ મેં આતી હૈ? કઈક અટક હો ગઈ? દેખો યહાં યહી સમજા રહે કે રાગ ભાવ જો હૈ ના વો ઉસકા સ્વભાવ ભાવ નહીં હૈ, તો ઉસમે વહ રાગ આત્મા કા હૈ એસા કહેના યે વ્યવહાર હૈ. અબ યહાં ક્યા કહેતે હૈ, જૈસા રાજા પૂરે સૈન્ય મેં વ્યાપા હુઆ નહીં હૈ, સૈન્ય સમૂહ મેં વ્યાપા નહીં હૈ, ફિર ભી કહેંગે કે રાજા નિકલ રહે. અભી દેખો અપને યહાં કોઈ અપના પ્રેસિડેન્ટ આયા યા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આયા તો ક્યા હોગા? ઉસકે પહેલે વો પાયલટ આતે, એક પહેલે આધે ઘંટે કે પહેલે આતે, ફિર બાદ મેં 15 મિનિટ, તો ક્યા હોગે? કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આયા આયા તો કોણ? વો પોલીસ બોલેંગે કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આયા, તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તો પોલીસ નહીં હૈ, ફિર ભી એ કહેના વ્યવહાર નહીં હૈ. મતલબ એ વૈસા યહાં કહેતે હૈ કે રાગ મેં ભી આત્મા વ્યાપ્ત હૈ એસા કહેના યહ ભી વ્યવહાર હૈ. અસંખ્ય પ્રકાર કે રાગ હૈ, અસંખ્ય પ્રકાર કે મિથ્યાત્વ કે પરિણામ હૈ, અસંખ્ય પ્રકાર કે અશુભ ભાવ હૈ, ઉસમે આત્મા વ્યાપા હુઆ નહીં હૈ, ફિર ભી ઉસમે આત્મા હૈ કે આત્મા ઉસમે વ્યાપ્ત હૈ એસા કહેના વ્યવહાર હૈ, ઉસસે તો આત્મા તદ્દન જુદા હી હૈ. યહાં તો ક્યા બતા રહે? દેખો દેખો વ્યવહાર રત્નત્રય નો રાગ, જીસકો હમ વ્યવહાર રત્નત્રય કહેતે વો રાગ, દેવગુરુ શાસ્ત્રની માન્યતાનો વિકલ્પ વો ભી વિકલ્પ મેં ડાલા, ઓર નવતત્વના ભેદરૂપ શ્રદ્ધાનો રાગ, યે સબ સમ્યક તો પ્રાપ્ત હોને કે લિયે ગરજ હૈ પહેલે, મતલબ ઉનકો શાસ્ત્ર બનવાના બનવાની રૂચિનો વિકલ્પ. અભી ઉસકે આગે કહેતે હૈ કે 5 મહાવ્રત પાળવાનો વિકલ્પ એ આત્મા નથી. અબ બોલો, તો કહેતે એ બધામાં આત્મા વ્યાપતો નથી, છતાંય બધામાં આત્મા છે એમ કહેવું તે વ્યવહાર નહીં છે. આત્મા તો તેને કહીએ કે એક શુદ્ધ ચિદ્ઘન છે, જેમ રાજા એક છે તેમ આત્મા એક જ છે, 5 યોજનમાં ફેલાયેલો રાજા છે એમ કહેવું એ તો સેનામાં રાજા કહેવાનો વ્યવહાર છે, તેમ રાગ ગ્રામમાં આત્મા વ્યાપ્યો છે એમ કહેવું એ તો પર્યાયમાં આત્મા કહેવાનો વ્યવહાર છે. ખરેખર પર્યાયમાં આત્મા વ્યાપતો નથી. અગર માન લો કે પર્યાય મેં આત્મા વ્યાપ્ત હો જાવે તો ક્યાં ગડબડ હોગી? હા મમ્મી, કોણ બોલ રહે? ઠેર ઠેર ઠેર, અરે 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 ઠેર, મેં સમજા મમ્મી અપની આ એક હી હૈ, દો દો હો ગયે, ચલ તીન તીન. ખ્યાલ મેં આયા? ક્યા કહે રહે? દેખો દેખો પર્યાય મેં આત્મા વ્યાપ્ત હો જાયગા, તો પર્યાય કિતને સમય કી હૈ? તો આત્મા ભી એક સમય મેં ગુલ હો જાયગા, આત્મા રહેગા હી નહીં. તો એસા કહેના યે વ્યવહાર હૈ, વાસ્તવિકતા એસી નહીં હૈ. દેખો ક્યા લિખા? ખરેખર પર્યાયમાં આત્મા વ્યાપતો નથી, યે મમ્મી સબ મેં વ્યાપ્તિ નથી. સમજમાં? તુમ ભલે બીચ મેં બોલો લેકિન મમ્મી નહીં હોને વાલે. ચલો આમ કહી શું કહેવા માગે છે કે અનાદિની જે પર્યાય પ્રપંચ ઉપર, પર્યાય પ્રપંચ ઉપર દૃષ્ટિ છે, અશુદ્ધ ઉપાદાન દૃષ્ટિ છે, તેનું લક્ષ્ય છોડી ભગવાન આત્મા જે એકરૂપ છે તેના ઉપર દૃષ્ટિ કર, તેથી પર્યાયમાં નિર્મળતા થશે. આહા, શું દિગંબર સંતોની વાણી! જે પુણ્યપાપરૂપ વિકાર છે તે ક્યાં લિખા હે? ભૂતાવળા એને, હા સમજમાં ને, ભૂતાવળ છે યાને કુછ કામ કે નહીં હૈ. હા એ તો ખાલી ડરાને વાલે ચમકાને વાલે अट्रैक्ट करने वाले ऐसे हैं। पुण्य पाप ना, देखो कहां से शब्द निकालते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी पॉसिबल नहीं होता है अपने को। जे पुण्य पाप रूप विकार छे ते भूतावल छे, भगवान आत्मा भूतार्थ छे, भूतावल मां भगवान चैतन्य मूर्ति आवे एम कदी बनतु नथी, छता ए पुण्य पाप ना भावोनी भूतावल मां आत्मा छे एम केहू ते व्यवहार नहीं छे। बहुत बढ़िया। अभी गाथा नंबर 49। हवे शिष्य पूछे छे के ए अध्यवसान आदि भावो छे ते जीव नथी तो ते एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव केवो छे, तेनू लक्षण शुं छे, ए प्रश्ननो उत्तर कहे छे। ये देखो अभी हमारे हमेश की जो गाथा है अलिंग ग्रहण की, यहाँ पर भी है, जो प्रवचन सार में हमने देखा था उसके हमने 20 अलग अलग बोल देखे थे, अभी यहाँ 6 देखेंगे। हाँ देखो क्या कहते हैं, अरसमरुवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सदम जानालिंग गहनम जीवमणि दिक्तिद संठानम अरसम अरूपम अगंधम अवक्तम चेतना गुणम अशब्दम जानी ही अलिंग ग्रहणम जीवम अनिर्दिष्ट संस्थानम जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन छे नहीं संस्थान जीवनो ग्रहण लिंग थकी नहीं
जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन छे निर्दिष्ट नहीं संस्थान जीवनु ग्रहण लिंग थकी नहीं।
ये तो हम जानते हैं कि पांचों परमागम में ये मतलब ये गाथा आई है। अब बताते हैं गाथार्थ। हे भव्य तू जीवम जीवने अरसम रस रहित, अरूपम रूप रहित, अगंधम गंध रहित, अव्यक्तम यानी अव्यक्त अर्थात इंद्रियों ने गोचर नथी एवो यानी इंद्रियों से ज्ञान में आ जाए ऐसा नहीं, इंद्रियों से पकड़ में आ जाए ऐसा नहीं है। चेतना गुणम चेतना गुणो चेतना जेनो गुण छे एवो अशब्दम शब्द रहित अलिंग ग्रहणम कोई चिन्ह लिंग एटले चिन्ह के कोई चिन्ह थी जेनु ग्रहण नथी एवो अने अनिर्दिष्ट संस्थानम एटले हाँ जी हाँ ओ अनिर्णी हो गया अनिर्दिष्ट चाहिए उन दूसरे नी के ऊपर निर्दिष्ट दी के ऊपर रफा अनिर्दिष्ट
ऊपर संस्कृत गाथा में है वैसा करना
लिखा ना वैसा दी के ऊपर रफार लिखा ना
हाँ अनी फिर दी और उसके ऊपर रफार
यानी क्या कह रहे हैं कि कोई चिन्ह थी जेनु ग्रहण नथी एवो अने जेनो कोई आकार केवा तो नथी एवो जान ये आकार यानी पुद्गल की अपेक्षा से उसका कोई आकार नहीं है ऐसा तू जान। अभी देखो क्या कहते हैं टीका जे जीव छे ते खरेखर पुद्गल द्रव्य थी अन्य हुआ थी तेमा रसगुण विद्यमान नथी माटे अरस छे। ये एक पॉइंट बताया। अब कहते पुद्गल द्रव्य ना गुणों थी पन भिन्न हुआ थी पोते पन रसगुण नथी माटे अरस छे। परमार्थे पुद्गल द्रव्यनु स्वामी पणु पण तेने नहीं हुआ थी ते द्रव्येंद्रियना आलंबन वड़े पण रस चाकतो नथी माटे रस छे। देखो यहाँ क्या समझा रहे हैं कि वह पुद्गल से जुदा है, पुद्गल द्रव्य जो है उसका स्वामीपना उसमें नहीं है, इसलिए जो द्रव्य इंद्रिया है उनके अवलंबन से वह रस नहीं चाकता है। यानी वह जो रस का उसे ज्ञान होता है वह अपने स्वयं के कारण से होता है और रस चाखता नहीं है, इसके लिए वह अरस है। तीसरा, ये तीसरा हो गया। पोताना स्वभावनी दृष्टि थी जो आमा आवे तो क्षाय क्षमिक भावनों पन तेने अभाव हुआ थी ते भावेन्द्रियना अवलंबन वड़े पन रस चाखतो नथी माटे अरस छे। अभी यहाँ जो अरस नाम का जो बोल है उस बोल को अलग अलग तरीके से समझाया गया है कि वह अरस क्यों नहीं है, ये पॉइंट वो बताते हैं। यानी इस तरह से अन्य शास्त्रों में इसका कथन नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ तो मजे की बात ऐसी है कि ये शास्त्र तो कुंदकुंद आचार्य ने लिखा है और टीका अमृतचंद्राचार्य ने लिखी और अमृतचंद्राचार्य ने उस टीका में अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ किया है सब्जेक्ट वाइज। वहाँ ज्ञान प्रधान कथन है, यहाँ दृष्टि प्रधान कथन है। तो ये अरस क्यों नहीं है, ये छे छे मतलब प्रकार के माध्यम से वो समझाया। देखो हम फिर से पढ़ते हैं।
तीसरे और चौथे में क्या भेद है?
पहले समझाओ तो सही, फिर भेद पूछो। आप समझाइए।
देखो तीसरे में क्या लिखा है,
पहले से लेना।
पहले में द्रव्य का भेद बताया, वहां पुद्गल द्रव्य और यहाँ जीव द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य थी अन्य हुआ थी तेमा एटले आत्मा मा रसगुण विद्यमान नथी माटे अरस छे। क्योंकि रस गुण है वो द्रव्य में है तो पुद्गल द्रव्य में है, और मैं तो जीव द्रव्य हूँ या आत्मा जीव द्रव्य है तो उसमें रस गुण नहीं है, ये बात है। यानी वो द्रव्य में डिफरेंस बताया। अब फिर गुण की बात करेंगे कि पुद्गल द्रव्य ना गुणों थी पन भिन्न हुआ थी। आत्मा जो है वो पुद्गलों के गुणों से भी भिन्न है, इसलिए आत्मा स्वयं भी रस गुण नहीं है। पहले में आया था पोता मा रस गुण नथी, क्योंकि अभी द्रव्य हूं मैं और वो गुण मेरे में नहीं है। दूसरे में मैं स्वयं या आत्मा स्वयं रस गुण नहीं है, क्योंकि वो पुद्गलों के गुणों से भिन्न है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में है? पहले में द्रव्य से भिन्न था, पुद्गल द्रव्य से भिन्न था। दूसरे में पुद्गल का गुण आत्मा नहीं है, ऐसी भिन्नता। तीसरे में क्या लिखा? परमार्थे पुद्गल द्रव्य नु स्वामीपणु नथी। यह पुद्गल द्रव्य किसको कहा है? द्रवेंद्रिय को, क्योंकि द्रवेंद्रिय पुद्गल है तो द्रवेंद्रिय से भी रस को नहीं चखता। क्यों? वो द्रवेंद्रिय उसका है कहाँ? वो तो पुद्गल है, और पुद्गल द्रव्य का आत्मा स्वामी नहीं हो सकता है, इसलिए वहां द्रवेंद्रिय ना आलंबन वड़े पन रस चाकतो नथी माटे अरस छे। तो आप कहेंगे भले द्रवेंद्रिय के द्वारा नहीं, परंतु भावेंद्रिय के द्वारा तो रस चाकता है कि नहीं? अपने ज्ञान पर्याय से तो करेगा कि नहीं, रस चाकेगा कि नहीं चाकेगा, ऐसा प्रश्न हो सकता है ना। तो चौथा पॉइंट बताया, क्या बताते? पोताना स्वभावनी दृष्टि थी जोवामां आवे तो क्षायोपशमिक भावनों पन तेने अभाव हुआ थी। क्या कहते हैं? अभी यहाँ त्रिकालीय आत्मा की बात है तो उसमें हम कोई प्रकार का ये क्षयोपशम पारिणामिक भाव को हमने त्रिकाली कहा, तो उसमें क्षयोपशमिक भाव का अभाव है। ये रस चखने वाला ज्ञान जो है द्रवेंद्रिय या भावेंद्रिय की जो बात उठा रहे हैं यहाँ, तो भावेंद्रिय ने ये क्षयोपशमिक ज्ञान इसको यहाँ क्षयोपशमिक भाव कहा। तो पारिणामिक भाव वह क्षयोपशमिक भाव नहीं है, उसमें वे अन्य चार भाव उसमें है ही नहीं है। पहले हमने ये नियमसार में भी बात देखी थी ना, क्योंकि ये पर्याय रूप भाव है और पारिणामिक भाव है वो त्रिकाली द्रव्य रूप भाव है, तो उसमें ये पर्याय है ही नहीं ऐसा कहेंगे, तो क्षयोपशमिक भाव है और यहाँ उसको भावेंद्रिया कहें। भावेंद्रिय किसको कहना? क्षयोपशमिक ज्ञान को ही भावेंद्रिया कहते हैं, जितना क्षयोपशमिक ज्ञान का उघाड़ है उसी को भावेंद्रिया कहते हैं। उस दिन बात आई थी ना, हाँ, आत्म प्रदेशों को भावेंद्रिया नहीं कहा, पूरे ही आत्मा में जो क्षोभशम ज्ञान का उघाड़ जो है उसको भावेंद्रिय कहते हैं। तो भावेंद्रिय से तो रस को चखेगा कि नहीं चखेगा, तो वो बात यहाँ कह रहे हैं कि क्षोभशमिक भाव का ये त्रिकाली में अभाव है, इसलिए भावेंद्रिय ना आलंबन वड़े पण रस चाखतो नथी, माटे अरस छे, क्योंकि पारिणामिक में तो वो रस वगैरह चाखने का ये जो पर्याय रूप भाव का अभाव ही है, इसलिए उसमें वो अरस है। आगे पढ़ेंगे?
नहीं, अभी पूछो प्रश्न।
हाँ, अभी तो बता दिया, अब कहते अभी प्रश्न पूछो। तो तीसरे में और चौथे में क्या डिफरेंस देखा हमने? वो अकेले भिन्न की बात नहीं, अरस क्यों कहा उसकी बात है। अरस जो रस नहीं है, यानी पहले में तो रस गुण इसमें नहीं है, दूसरे पॉइंट में ये स्वयं रस गुण नहीं है, तीसरे में वो रस को नहीं जानता है, द्रव्येंद्रिय को द्वारा नहीं जानने वाला है इसलिए अरस कहा, चौथे में भावेंद्रियों के द्वारा वो रस को जानता होगा तो ऐसा भी नहीं, इसलिए उसको अरस कहा। अरस कहने का प्रयोजन अलग अलग पद्धति से बता रहे हैं, ख्याल आता है? द्रवेंद्रिय कुछ जानने का कार्य नहीं करती, वो तो पुद्गल द्रव्य है
और जीव का स्वामी बना नहीं है ना उसमें,
और जीव पुद्गल का स्वामी हो नहीं सकता। हाँ, तो जो भिन्न द्रव्य है, तो भिन्न द्रव्य के द्वारा ये रस को जानेगा ऐसा कैसे हो सकता है? द्रवेंद्रिया पुद्गल द्रव्य है, जीव द्रव्य पुद्गल का स्वामी नहीं है, इसलिए द्रवेंद्रियों के द्वारा रस को चखता है ये बात हो ही नहीं सकती है, बराबर, इसलिए उसको अरस कहा। नहीं नहीं, द्रवेंद्रिया तो जानने का कार्य ही नहीं करती, फिर
क्यों,
भी
क्यों नहीं करती है? आपका कहना है कि ज्ञान तो सिर्फ जीव द्रव्य में है, पुद्गल में नहीं है, तो हम तो कहते हैं जीव के ये पॉइंट में खारापन आता है, जरा अंदर जाओ तो मीठापन, जरा इस तरफ कड़वापन, उस तरफ, ये खाली बात है, ये हमारा साइंस कहता है ऐसा, क्योंकि पुद्गल में तो ज्ञान ही नहीं, पुद्गल में तो ज्ञान ही नहीं, तो क्या करे क्या? हाँ बोलो, आगे बढ़ा।
हाँ, तो ये देखो, ये रस अरस ये शब्द है ना, इस पर छह बोल घटा रहे, अरस अरुआ अगंध प्रत्येक पर छह छह बोल घटाएंगे, अरस पर भी, फिर अरूप पर भी, अगंध पर भी, इस तरह से। वहां अलिंग ग्रहण में जो हमने प्रवचन सार में, वहां तो वो लिंग शब्द के अर्थ किए थे अलग अलग, लिंग से नहीं जानता, लिंग के द्वारा पहचाने में आता, तो लिंग के भी कई उपयोग कहा, कहीं उसका लिंग का अर्थ वो चिन्ह कहा, कहीं उसका इंद्रिय कहा, तो उसके अलग अलग भेद किए थे। यहाँ एक एक जो अरस अरूपी वगैरह जो है उस पर एक एक पर छः छः बोले, पहले में वो पुद्गल द्रव्य नहीं है, दूसरे में वो पुद्गल का गुण नहीं है आत्मा स्वयं, तीसरे में द्रवेंद्रिय के द्वारा उसको नहीं जानता इसलिए वो अरस कहेंगे यहाँ, तो फिर भावेंद्रिय के द्वारा भी नहीं जानता, क्यों? क्योंकि भावेंद्रिय तो क्षोभशमिक भाव है और वो त्रिकाली द्रव्य में वो है ही नहीं है, इसलिए वो अरस है। ये चार बोला है ना ख्याल में, ऐसे ही सब में वही वही फॉर्मूला लगेगा, खाली अरस के बदले वहां अरूप होगा, अगंध होगा, ख्याल है? अभी पांचवा पॉइंट क्या देखिए, सकल विषयों ना विशेषों मा साधारण एवं एकज संवेदन परिणाम रूप तेनो स्वभाव हुआ थी ते केवल एक रसवेदना परिणाम ने पामी ने रस चाकतो नथी माटे अरस छे। क्या कहते हैं, क्या ज्ञान का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव मात्र रस को जानने का है क्या? तो किसको जानने का है? हाँ, सभी विषयों को जाने ऐसा स्वभाव है। फिर भी देखो, सकल विषयों ना विशेषों में साधारण, यानी सभी जो विषय है और उनमें जो कुछ अलग अलग विषय जो है उनमें साधारण एवं एकज संवेदन परिणाम जनो स्वभाव छे। संवेदन परिणाम यानी ज्ञान स्वभाव, यानी इसका ज्ञान स्वभाव एक ही है, वो ज्ञान से सभी विषयों को जानता है। ऐसा नहीं कि अकेले रस को ही जानता है तो उसको हम रस कहेंगे या रस तो कहते हैं, ऐसा हुआ थी केवल एक रस वेदना परिणाम ने पामी ने रस चाकतो नथी माटे अरस छे। तो रस वेदना परिणाम ने ये प्राप्त नहीं होता, केवल शब्द रहे ना, मात्र एक रस वेदना परिणाम ने ज नहीं प्राप्त होता, अकेले रस को ही जानना ऐसा उसका कार्य नहीं है, इसलिए वो अरस है। ये पांचवा पॉइंट हुआ। अब छठा पॉइंट, तेने समस्त गेय नु ज्ञान थाई छे परंतु सकल गेय ज्ञायकना तादात्म्य नो, तादात्म्य किसको कहते, एक में खोने को तादात्म्य कहते, तो एक रूप थवानो निषेध हुआ थी। रसना ज्ञान रूपे परिणमता छता पण पोते रस रूपे परिणमतो नथी माटे अरस छे। पहले तो पांचों में कहते कि एक मात्र रस का ज्ञान नहीं, अन्य सभी विषयों का ज्ञान है, तो ये तो ज्ञान स्वरूप है, सामान्य ज्ञान ऐसा है। अब छठे में क्या कहते हैं कि सकल गेय ज्ञायक ना तादात्म्यनो निषेध है, इतने अनेक अन्य अन्य गेयों को जानता है फिर भी वो गेय और ज्ञायक का तादात्म्य नहीं होता, एक में एक पना नहीं होता, एक रूप नहीं हो जाते।
समझा रहे कि ज्ञायक भिन्न है और गेय भिन्न है, ये दोनों आत्मा उसे जाने यानी ज्ञायक उसको जाने, इसलिए गेय रूप गेय ज्ञान रूप हो जाए ऐसी भी बात नहीं है, तादात्म्य नहीं होता। बताइए।
तो कहते हैं कि ये रस का ज्ञान तो हो जाता है आत्मा को, रसना ज्ञान रूपे परिणामता हुआ छता, परिणामता छता पण पोते रस रूपे नथी परंतु, जैसे दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब है तो दर्पण अग्नि रूप नथी परिणामतो। हाँ, रस रूप, यहाँ रस की बात है, ज्ञान गेय रूप नहीं बन जाता है, गेय का ज्ञान तो कर लेता है। वैसे यहाँ
हम हमेशा ऐसा देखते हैं कि गेय ज्ञान गेय रूप नहीं होता है, यहाँ पर गेय ज्ञान रूप नहीं होता है, ऐसा लेना। बोलो।
देखो क्या कहते हैं, ये ज्ञान और गेय और ज्ञायक का तादात्म्य नहीं होता है, एकमेक नहीं होता है, इसलिए रस का ज्ञान तो होता है परंतु आत्मा स्वयं रस रूप नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है ना, नहीं तो कभी रस हो जाए कभी गंध हो जाए, हाँ तो जानने से वो थोड़ा ही उसका रस गंध ऐसा हो जाता है, तो जानने में आता है। तो हमारी कथन पद्धति है कि मेरे ज्ञान में आया, ज्ञान में आया ने हमने जाना उसको, हमने हमारे ज्ञान में आया ऐसा कहते हैं, हम कहते हमारे ख्याल में आ गया या हमारे समझ में आ गया, समझ में आया यानी सामने की चीज घुसी थोड़ी अंदर, ये गाथा हमारे ख्याल में आ गई तो गाथा का गाथा तो पुस्तक में पड़ी है, तो ज्ञान में आई है ने क्या, हमने उसको जाना उसका अर्थ समझा इसको जानने में आ गई, परंतु वो ज्ञान में घुस नहीं जाती है, ज्ञान उसको जान लेता है। वैसे ज्ञान रस को जानता है पर ज्ञान स्वयं रस रूप नहीं होता है, इसलिए वो अरस है। हाँ, जान भिन्न रहकर जानता है, गेय उसके अंदर भी नहीं घुसते हैं और नहीं वो गेय जैसा परिणमित हो जाता है, वो स्वयं गेय जैसा परिणमन यानी कैसे गेय रूप नहीं बन जाता। जैसे सामने फूल है तो ज्ञान तो फूल को जानेगा, तो ज्ञान फूल नहीं हो जाता।
फूल लोग ज्ञान से फूल को समझ
फिर भी हम क्या कहें, फूल का ज्ञान वो तो समझाने के लिए, ज्ञान किसको जान रहा है वो समझाने के लिए हम फूल का नाम भी लेते हैं। तो ज्ञान तो ज्ञानमय ही है, हमेशा ज्ञान ज्ञानमय ही रहकर संपूर्ण पदार्थों को समस्त विश्व को जान लेता है। तो ये इस तरह से रस के 6 बोल हुए। पहले बोल में द्रव्य नहीं है क्योंकि पुद्गल द्रव्य है अन्य और आत्मा अन्य है, इसलिए उसमें रस गुण नहीं है। दूसरे बोल में आत्मा स्वयं रस गुण नहीं है। तीसरे में द्रव्येंद्रिय से वो नहीं जाता क्योंकि द्रव्येंद्रिय तो पुद्गल है और आत्मा पुद्गल का स्वामी नहीं है, इसलिए वो अरस है। चौथे में भावेंद्रिय से, क्योंकि क्षोभ शमिक भाव ये तिकाली आत्मा में नहीं है, तो इसलिए वहां पर वो भावेंद्रिय से भी वो जानने का कार्य नहीं करता, इसलिए अरस है। ये 4 हो गए। पांचवे में बताया था
सिर्फ
कि सभी विषयों को जानने का कार्य, मात्र अकेले रस को ही नहीं जान रहा है इसलिए उसको अरस कहा। और छठे में गेय और ज्ञायक एक मेक नहीं होते, तादात में नहीं होते हैं, इसलिए रस को जानते हुए भी आत्मा स्वयं रस रूप नहीं परिणमता या ज्ञान स्वयं रस रूप नहीं होता है, इसलिए उसको अरस कहा। तो ये 6 बोल हो गए। अभी ऐसे ही आगे आगे के बोल हम पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे आगे? अगले पृष्ठ पर
देखो, आगे हम पढ़ते हैं। ए रीते जीव खरेखर पुद्गल द्रव्य थी अन्य होवा थी तेमा रूपगुण विद्यमान नथी। अभी यहाँ पहला पॉइंट आ गया, पुद्गल द्रव्य थी अन्य। बीजो पॉइंट, पुद्गल द्रव्य ना गुणोती पन भिन्न होवा थी पोते पन रूप गुण नथी माटे अरूप छे। परमार्थे पुद्गल द्रव्य नो स्वामी पनु नथी, नहीं होवा थी ते द्रव्येंद्रियना आलंबन वड़े पन रूप देखतो नथी, द्रव्येंद्रियनु अवलंबन। तीसरा पॉइंट, पोताना स्वभावनी दृष्टि थी जोवामां आवे तो क्षायोपशमिक भावनो पन तेने अभाव होवा थी। ये चौथा पॉइंट, ते भावेंद्रियना आलंबन वड़े पन रूप देखतो नथी माटे अरूप छे। पांचवा, सकल विषयों ना विशेषों में साधारण एवा एकज संवेदन परिणाम रूप तेनो स्वभाव हुआ थी ते केवल एक रूप वेदना ना परिणाम ने पामी ने रूप एक रूप वेदना परिणाम ने पामी ने रूप देखतो नथी माटे ते अरूप छे। और छठा पॉइंट, तेने समस्त ज्ञेयोनु ज्ञान थाय छे परंतु सकल ज्ञेय ज्ञायकना तादात्म्यनो निषेध होवाथी रूपना ज्ञान रूपे परिणमता छता पण पोते रूप रूपे परिणमतो नथी माटे अरूप छे। आम 6 प्रकारे रूपना निषेधथी ते अरूप छे। अभी ये जो हमने अरूप की बात देखी वो 6 पॉइंट कौन बता पाएगा बिना देखते? डॉक्टर बताएंगे आप? हाँ बोलो, फिर पॉइंट पॉइंट बताना मतलब। हाँ 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 एटले द्रव्येंद्रिय थी। हाँ चलो आगे चलो। हाँ માટે તે અરૂપ છે। ગ सकल के गायक जो है वो तादाद में रूप नहीं होते हैं। बस ये 6 पॉइंट ख्याल में आ जावे ना तो ब्रह्मा तुम बताएगी। हाँ बोलो बोलो, बिना देखे बोलो, शाबाश। उद्गल द्रव्य आत्म द्रव्य दोनों द्रव्य से जुदे जुदे है। हा? अभी खाली पॉइंट्स बोलना, फिर सब में लग होंगे, अरस में लगेंगे, अरूप में
तो
लगेंगे।
उसमें उसके अंदर रूप गुण नहीं है ऐसा लेना। हाँ। उसमें पहले में
ये तीसरा पॉइंट है। नहीं रुकना रुकना, अभी आपकी बहुत गड़बड़ हो रही है। सौभाग्य चंद बताइए, सेकंड से
पहला है। आपने खाली दो द्रव्य भिन्न है ऐसा कहा, वहां तक रुकना नहीं। जैसे पुद्गल द्रव्य में रस गुण है या रूप गुण है, परंतु आत्म द्रव्य और वो भिन्न है, आत्मा में रूप गुण नहीं है। और दूसरा पॉइंट में आत्मा स्वयं रूप गुण नहीं है। आत्मा द्रव्य है उसके अंदर रूप गुण नहीं है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अभी वहां क्या लिया, पुद्गल द्रव्य ना गुणोत्थी पर आत्मा भिन्न है, इसलिए आत्मा स्वयं रूप गुण नहीं है, ये दूसरा पॉइंट है।
ऐसा है, आप जो कह रहे बिल्कुल बराबर है। पहले हम 6 पॉइंट तो देख ले, यानी ये जो डिटेल में आप बता रही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन पहले सिर्फ स्थूल पॉइंट तो देखिए कि पहले भाई द्रव्यों में भी भिन्नता है, गुणों में भिन्नता है, यानी गुण उसमें है नहीं, आत्मा में गुण नहीं है, वो अरूप।
इसलिए आत्मा में गुण नहीं है वो तो पहला पॉइंट है। फिर पढ़ना,
देखो क्या
आत्मा में गुण नहीं है, रस गुण
रूप, रूप गुण विद्यमान नथी माटे अरूप छे। हाँ जीव खरेखर पुद्गल द्रव्य थी भिन्न हुआ थी, जीव में अरूप
रूप गुण नथी,
रूप गुण नथी, तेथी आत्मा अरूपी छे, ऐसा लेना, अरूप है उसमें। अभी दूसरे में पुद्गल द्रव्य में जो गुण है वह गुण आत्मा में विद्यमान नहीं है, इसलिए वह अरूप है, ऐसा।
पुद्गल द्रव्य के गुणों से आत्मा भिन्न है, पुद्गल द्रव्य के गुणों से आत्मा भिन्न है, आत्मा स्वयं रूप गुण नहीं है, ये दूसरा पॉइंट है।
देखो पहला पॉइंट ऐसा है, सुनना आपकी गड़बड़ हो रही है। हाँ बता दो। देखो पहला क्या है, जो आत्मा है या जीव है वह पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, इसलिए आत्मा में रूप गुण नहीं है। ये किसकी बात चल रही, द्रव्य की, पुद्गल के द्रव्य की। अभी कहते हैं पुद्गल द्रव्य में जो रूप गुण छे, हा? वो आत्मा में नहीं, वहां द्रव्य नहीं तो ये अरूप।
ये घोटाला आप कर रहे हैं, आप फिर घोटाला कर रहे हैं।
देखो
दूसरा पॉइंट है, आत्मा स्वयं रूप गुण नहीं है।
हाँ, पहले
पॉइंट में आत्मा पुद्गल द्रव्य नहीं है, पहला पॉइंट में आत्मा पुद्गल द्रव्य नहीं है, इसलिए उसके अंदर रूप गुण नहीं है, तेमा रूप गुण नहीं, बराबर। दूसरे पॉइंट में पुद्गल द्रव्य के गुण से भी आत्मा भिन्न है, इसलिए वो स्वयं रूप गुण नहीं है,
पोते रूप गुण नहीं। पहला
पहले में आत्मा में, अभी बाकी आप द्रव्य की बात छोड़ दो, पहले पॉइंट में आत्मा में रूप गुण नहीं है, दूसरे पॉइंट में आत्मा स्वयं रूप गुण नहीं है। अभी अभी घोटाला दूर हुआ, ये स्वयं नहीं है। हाँ स्वयं रूप गुण नहीं है वो।
और तीसरा क्या है,
पुद्गल द्रव्य का चौथा में। हाँ
हाँ
वो रूप को जानता नहीं।
थर्ड और फोर्थ पॉइंट, शॉर्ट में नहीं अभी पूरा बोलना, वो मास्टर मारता है मेरे को। कोई बात नहीं, कल याद करके आना, कल पूछूंगा भाई, और गुलटी मत खाना, हो गया तो देखेंगे। अब ये सेकंड पैराग्राफ कल से लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूर्य